Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Kathopanishad, presented by Swami Sri Akhidanandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Srishti ke kan kan mein anusyut nirakar parmatma aur usi nirakar parmatma ke sakar rup mein upasthit जिज्ञासु श्रोतायन, कल हमने देखा नचिकेता को यमराज जी कह रहे हैं। नचिकेता, यह जो उपदेश है, यह उपदेश सुनकर अच्छी तरह से ग्रहण करके उसके ऊपर विचार करके जो कोई भी व्यक्ति उसे जान लेता है वह आनंद स्वरूप ब्रह्म को जान लेता है, और वह ब्रह्म जिसका उल्लेख शास्त्र करता है वह ब्रह्म और कोई नहीं, मैं ही स्वयं हूं। नचिकेता, आपने यह प्रश्न पूछा है, आपके लिए तो द्वार अमृत के, मोक्ष के खुल चुके हैं। क्यों? क्योंकि आपके मन में आत्मतत्व की जिज्ञासा उत्पन्न हुई है, और आत्मतत्व की जिज्ञासा उत्पन्न अगर हो गई, गुरु करने की कोई नहीं, नहीं ऐसा नहीं, गुरु करने की कोई जरूरत नहीं, गुरु अपने आप आपके जीवन में प्राप्त हो जाएगा, ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। मैंने ये नहीं कहा कि गुरु करने की जरूरत नहीं है, जिज्ञासा उत्पन्न होनी चाहिए। जिज्ञासा हो गई फिर कई लोग अक्सर गुरु के लिए दर दर भटकते हैं, ढूंढते हैं, हरिद्वार जाते हैं, ऋषिकेश जाते हैं, लेकिन यह जिज्ञासा हो गई तो व्यवस्था ही ऐसी है आपके जीवन के अंदर गुरु उपलब्ध हो जाएगा। नचिकेता, आपके जीवन के अंदर भी यमराज के रूप में गुरु उपलब्ध हो चुका है, इसलिए आपके लिए अमृत के द्वार, मोक्ष के द्वार मैं खुला हुआ मानता हूं। नचिकेता ने सुना और नचिकेता ने कहा, अगर मैं मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए मैं लायक हूं, एलिजिबल हूं, तो कृपा करके मुझे कुछ बात कहिए। कौन सी बात? यह 14वें मंत्र में आज हम देखेंगे। अन्यत्र धर्माद अन्यत्र धर्माद अन्यत्रास्मात् कृता कृतात् अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यत्तत् पश्यसि तद्वद। जो धर्म से भिन्न है अधर्म से भी भिन्न है, और जो भूत वर्तमान और भविष्य से भी अन्य है, और तीनों काल के साथ संबंध रखने वाले पदार्थों से भी भिन्न है, ऐसा तत्व जो आप देखते हो, जानते हो, वह कृपा करके मुझे कहिए। धर्म से भी भिन्न, हम अक्सर ये सोचते हैं कि यज्ञ याग करा ले हमें परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। यहां धर्म का अर्थ है शास्त्रीय अनुष्ठान, जिसे हम यज्ञ याग कहते हैं, नवचंडी है, लक्ष चंडी है, लघु रुद्र, महारुद्र इत्यादि। ऐसा जो शास्त्रीय अनुष्ठान है, उस शास्त्रीय अनुष्ठान भी परमात्मा नहीं है। शास्त्रीय अनुष्ठान भी परमात्मा नहीं, क्यों? क्योंकि वह शास्त्रीय अनुष्ठान जो है वह कर्म साध्य है। एक बार आपने शास्त्रीय अनुष्ठान शुरू किया, फिर कुछ दिनों के बाद वह समाप्त हो जाएगा। जो शुरुआत और अंत वाला होता है उससे अनंत की प्राप्ति तो नहीं हो सकती, इसलिए नचिकेता ने प्रश्न पूछा, धर्म से जो भिन्न है, अतीत है, यानी शास्त्रीय अनुष्ठान से भी जो अतीत है, भिन्न है, और अन्यत्र अधर्मात्, अधर्म से भी भिन्न, वो तो स्वाभाविक है ना स्वामी जी, धर्म से भिन्न है तो अधर्म से तो भिन्न ही होगा, लेकिन यहां अधर्म का अर्थ है धर्म का अभाव। धर्म का अभाव माने क्या? कर्म संन्यास करने मात्र से भी यह परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, यानी संन्यास के वस्त्र धारण करने मात्र से ही परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। संन्यास किस लिए लिया जाता है? प्लस सब कर्मों को छोड़ दो और अब सिर्फ आत्म तत्व में ही लगो, इसलिए संन्यास ग्रहण किया जाता है, द्विदिशा संन्यास विशेषतः। तो सिर्फ आपने संन्यास के वस्त्र पहने और शास्त्र श्रवण मनन चिंतन नहीं किया तो भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। तीन प्रकार के संन्यास शास्त्रों में प्रसिद्ध है। एक है विविदिशा संन्यास। विविदिशा माने आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए लिया गया, यानी विधिवत लिया गया संन्यास, जिसे कहते हैं विविदिशा। वेदितुम इच्छा, जानने की इच्छा है। क्या जानने की इच्छा है? आत्मतत्व जानने की इच्छा है, इसलिए शास्त्रीय विधि से लिया हुआ संन्यास। मैं इसलिए विशेषण लगा रहा हूं शास्त्रीय विधि, क्योंकि कई लोग आप देखते हो पोस्ट में संन्यास देते हैं, ऐसी भी संस्था है हमारे देश में। आपको अगर संन्यास चाहिए और आप उसको कागज लिख दो मुझे अब संन्यास चाहिए, आपकी साइज भेजो, तो आप साइज भेजते हो, साइज के मुताबिक आपके कपड़े वहां से आते हैं और आप पहनते हो, फिर आपको अच्छा नहीं लगता। अब ये संन्यास का कपड़े पहने, अब ये सुबह उठना, पहले तो मैं सिगरेट पीता था, अब तो सिगरेट भी नहीं पी सकता हूं, ये छोड़ दो। फिर आपने बोला ये अभी अनुकूल नहीं आता, मैं वापस कर रहा हूं। हां कोई बात नहीं, आप कपड़े हमको वापस भेज दो। तो वैसे भी संस्था हमारे देश में है, वो हमारे कम भाग्य है। इसलिए मैंने कहा शास्त्रीय विधि से लिया गया जो संन्यास है आत्मतत्व जानने की इच्छा से, उसे कहते हैं विविदिशा संन्यास। दूसरा है आपत संन्यास। आपत माने आपत्ति काल में लिया गया संन्यास, जैसे आदि शंकराचार्य जी है, उसने जो संन्यास ग्रहण किया आपत्ति काल में, मगर ने उसका मुंह पकड़ा, पांव पकड़ा, मुंह तो नहीं, उसके मुख, मगर के मुख से पांव पकड़ा, और उसने मां को कहा अगर तू मुझे संन्यास की इजाजत देती है संभवतः यह मगर मेरा पांव छोड़ दे। तो मां ने इजाजत दी, हां ठीक है बेटा कोई बात नहीं, कम से कम सन्यासी के वेश में बच्चा जिंदा तो रहेगा मेरे सामने। तो वह जो सन्यास है वह आपत सन्यास है। डोंगरे महाराज जी ने जो अंत समय में सन्यास ग्रहण किया नडियाद में, वह आपत सन्यास। क्यों? अभी डॉक्टर ने कह दिया बस कुछ नहीं हो सकता इसमें, अब कुछ घंटों के मेहमान है, तो अगर कोई व्यक्ति चाहे संन्यास ले सकता है। आप लोगों को भी मैं कह रहा हूं हां, लेकिन आपत संन्यास की बात कर रहा हूं। लेकिन अगर प्रश्न होगा स्वामी जी अगर उस वक्त डॉक्टर ने कहा अब कुछ नहीं हो सकता और संन्यास ले लिया सोते सोते और फिर अच्छे हो गए तो, अच्छे हो गए तो फिर आप घर में नहीं रह सकते हो, आपको गृह त्याग करना ही होगा, भगवान की यही इच्छा होगी। तो एक मैंने कहा विविदिशा, दूसरा आपत, और तीसरा है विद्वत संन्यास। विद्वत संन्यास माने ज्ञान के द्वारा ही कर्तृत्व का जिन्होंने बाध किया है, वह व्यक्ति यह कपड़े वाला हो भी न भी हो, गृहस्थ भी हो सकता है, जैसे राजा जनक
विद्वत सन्यासी भले ही कपड़े राजा के पहने हुए हो, तो वहां अर्थ होता है ज्ञान के द्वारा जिन्होंने कर्ता भाव का त्याग कर दिया है वह है विद्वत सन्यास। तो यहां जो अन्यत्र अधर्मात शब्द जो है मंत्र के अंदर, उसके कहने का तात्पर्य यह है कि सिर्फ सन्यास के वस्त्र धारण करने से मात्र से ही तत्व ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, आपको श्रवण मनन निधि ध्यासन भी करना पड़ेगा। इसलिए यहां कहा अन्यत्र अधर्मात, धर्म से अन्य यानी कर्मकांड का जो विभाग है उससे भी अन्य, सन्यास के वस्त्र धारण करने मात्र से भी अन्य, या तो जो साधन है वैराग्य षट संपत्ति उससे भी तत्व है जो अन्य है। और फिर कहा अस्मात् कृत अकृताच, कार्य कारण से भी अतीत है। ये पूरी सृष्टि जो हम देख रहे हैं उसे कहते हैं कार्य, और उसका जो कारण है ईश्वर जिसको कहते हैं जगत कारणम ब्रह्म, माया उपाधि वाला ब्रह्म, उससे भी यह परमात्मा अतीत है। इसलिए कहा कार्य कारण अतीत। और फिर कहते हैं अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च, भूत भव्य और एक है भूतकाल, दूसरा है वर्तमान और तीसरा है भविष्य काल। इन तीनों कालों से भी आत्मतत्व पर है। उतना ही नहीं, यह जो आत्मतत्व है वह किसी पदार्थ से संबंधित भी नहीं है, इसलिए कहते हैं उसको देश काल वस्तु से मुक्त जो परमात्मा है कृपा करके वह मुझे कहिए। नचिकेता ने यहां आत्मतत्व के लिए प्रश्न पूछा है, किसी विशिष्ट देवता के लिए प्रश्न नहीं किया कि शंकर जी के दर्शन करा दो, श्री कृष्ण के दर्शन करा दो, क्योंकि आपके पास तो पहुंच बहुत है, आप तो सबको जानते हो, क्योंकि आप कौन हो, यमराज हो, कृष्ण से भी आपके पहचान है, शंकर से भी है, राम से भी है। लेकिन यह प्रश्न नचिकेता ने नहीं पूछा, नचिकेता ने तो तत्व के बारे में प्रश्न पूछा, कृपा करके आप जैसा जानते हो या देखते हो वैसा कृपा करके मुझे कहिए। अब यमराज तो तत्व ज्ञाता है क्योंकि वो आचार्य है, और स्वाभाविक है जो दर्शन आचार्य ने किया, जो तत्व आचार्य ने जाना है, वह जैसा है वैसा नचिकेता को कहने वाले हैं। सुनी सुनाई बात नहीं, यमराज जी मुझे तो जैसे आपने देखा है वैसा आप कृपा करके मुझे कहिए। नचिकेता ने यह प्रश्न पूछा और उस प्रश्न के उत्तर में सबसे पहले यमराज जो मंद अधिकारी है या मध्यम अधिकारी है उनके लिए ओमकार की उपासना का उपदेश देते हैं। क्यों? ये श्रुति माता जो है वह दयावान है। दयावान इसलिए है कि तत्व के मार्ग से कोई भटक न जाए, इसके लिए जिस व्यक्ति की जैसी योग्यता हो, अधिकारित्व हो, उसके मुताबिक उसको उपदेश देगी और तत्व के मार्ग में लगाएगी। जैसे एक मां है, तीन बच्चे हैं, एक बच्चा सिर्फ दूध पी सकता है तो उसे दूध देगी, एक बच्चा जो है अभी थोड़ा चावल और दाल पिसा हुआ मिक्सचर में वह खा सकता है तो उसे वह भी खिलाएगी, और एक तीसरा बच्चा है रोटी सब्जी दाल वो खा सकता है तो वो उसे भी देगी। बस वैसी ही बात यहां श्रुति माता की भी है। तो श्रुति माता के अंदर अनुकंपा होने की वजह से सबसे पहले मंद और मध्यम अधिकारी के लिए ओमकार का उपदेश करती है कि वह व्यक्ति जो है ओमकार की उपासना करके अपने अंतकरण शुद्ध करके परमात्मा को जान सके। इसलिए अब मंत्र नंबर 15वां जो आ रहा है उसमें ओमकार का उपदेश हो रहा है। सर्वे वेदा यत्पदमावनन्ते तपांस सर्वाणि च यद्वदन्ति यदि छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ते तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीमि ओम इति एतत्। अनुवाद है, सब वेद जिस पद का वर्णन कर रहे हैं, सब तप जिसकी प्राप्ति के साधन कहे जाते हैं, जिसकी इच्छा से मुमुक्षु जन ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, उस पद को मैं आपको हे नचिकेता संक्षेप में कह रहा हूं। वह पद है कौन सा? ओम, यह ही पद है। सर्वे वेदाः यत् पदम आमनन्ति, सभी वेद उस पद का वर्णन करते हैं, आमनन्ति बार बार प्रतिपादन करते हैं। अब हम तो ये भारतीय संस्कृति में पले हुए हैं, तो हमें तो पता है कि वेद कितने हैं, चार वेद है, हम सुनते आए हैं। लेकिन अक्सर लोग ये भ्रांति में रहते हैं वेद मतलब इतनी बड़ी बुक, जैसे यहां है ना आपके सामने, कई मंदिरों पे आप जाएंगे तो वो कांच की पेटी के अंदर सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, चार पेटियां होगी कांच की और उसमें बड़े बड़े पुस्तक रखे होंगे। अब कुछ लोग ऐसे हैं, पढ़ना नहीं उसे अच्छा नमस्कार कर लो, नमस्कार करके वहां से निकल जाते हैं। लेकिन यह जो पुस्तक के अंदर हम शब्दों के रूप में छपाई देख रहे हैं, उसके पहले भी वेद तो था ही। कैसे था? जैसे प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आई नहीं, उसके पहले वेद उपलब्ध थे भोजपत्रों के ऊपर, उसके पहले भी वेद था। जब भोजपत्र के ऊपर लिखने की टेक्निक डेवलप नहीं हुई थी, उसके पहले भी वेद तो थे ही। किस रूप में थे? गुरु ने शिष्य को कहा, शिष्य ने गुरु को कहा, इस तरह हमारे वहां परंपरा चली आई। इसलिए यह जो वेद है आज तक सुरक्षित क्यों है? वह परंपरा अभी भी चल रही है। आज भी साउथ में ऐसे कोई स्कूल है जहां इस तरह से वेद सिखाया जाता है। गुरु ने एक मंत्र कहा, शिष्य ने सुना, शिष्य ने तीन बार रटा और उसके दिमाग में बैठ गया है। आज भी है ऐसे। तो यह जो वेद है उसके ऊपर ही हमारे वहां चतुर्वेदी, मतलब कौन? जो चार वेद जानते हो, चारों वेद, जिन्होंने अपना जीवन एक वेद को समझने के लिए कम से कम 12 साल लगते हैं। अब बताइए, जिन्होंने चारों वेद कंठस्थ किए हैं उसकी आयु 48 की तो हो गई? हाँ, नहीं नहीं, 12 साल हुए एक वेद, तो उसने चारों वेद कंठस्थ किए, कम से कम 48 साल तो हो गई। तो 48 साल की आयु जिसने अपने वेदों रटने के लिए में लगा दी, उसको कहते हैं चतुर्वेदी। बाद में त्रिवेदी सरनेम भी है। तो तीन वेद जिन्होंने कंठस्थ किए हैं त्रिवेदी, दो वेद द्विवेदी, और सिर्फ एक मिस्टर वेद। और जो जानते नहीं वो, उसकी तो बातें ही मत करिए। तो देखिए ये हमारे समाज के अंदर चार प्रकार की सरनेम देखने मिलती है। यह वेद में ऐसा क्या है? तो वेद के अंदर 80,000 जो मंत्र है वह मंत्र कर्म कांड के है, 16,000 मंत्र जो है वह उपासना के है, और सिर्फ 4,000 मंत्र है वह ज्ञान के है। इसलिए कुल मिला के कितने हुए? 1,00,000 मंत्र। प्रत्येक वेद के अंदर 1,00,000 मंत्र है, उसमें 80,000 कर्म विभाग किसके लिए? तो अंतकरण की शुद्धि के लिए, सकाम कर्म का भी उसमें उल्लेख तो है ही, और साथ में अंतकरण का जो मल जिसे कहते हैं राग द्वेष, उसे निवृत्त करने के लिए वेद के कर्म विभाग है। चित्त अभी भी विक्षिप्त है, चंचल है, उसके लिए उपासना विभाग है, और आवरण निवृत्ति के लिए ज्ञान विभाग है। इसलिए वेद के 3 विभाग, कर्म, उपासना और ज्ञान, वो किसके लिए? तो अंतकरण के जो 3 दोष है, मल, विक्षेप और आवरण, वहन निवृत्ति करने के लिए वेद हमारे सामने उपलब्ध है। इसलिए यह जो वेद है वह वेद के ज्ञान विभाग के अंदर, ये ओमकार की बात चल रही है अब, तो ज्ञान विभाग के अंदर 4 महावाक्य देखने मिलते चारों वेदों के अंदर। उसमें जब विचार करने के लिए बैठते हैं तो तत्वसी महावाक्य ही सबसे पहले आएगा, तत् त्वम असि, आप वह हो। अब वह शास्त्र बताता है, आप तो हमको मालूम है, जैसे शास्त्र ने कहा आप माने मैं, आप यानी कि मैं वह हूं, लेकिन वह कौन है वह शास्त्र बतलाएगा। अगर मान लीजिए शास्त्र ने बतलाया नहीं और वह सिर्फ मैंने कहा आप वह हो, ऐसा बोलकर मैं खिड़की के बाहर झांकता हूं तो बाहर गधा खड़ा है, बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। तो वह जो है, तत्पद जो है, वह शास्त्र बतलाता है। तो जो तत्वमसि जो महावाक्य है उसमें जो तत्पद है वह ईश्वर है, त्वम पद जो है वह जीव है, और दोनों की एकता असी पद के अंदर देखने मिलती है। उसमें वाच्यार्थ को त्याग करके लक्षणा के द्वारा बोध किया जाता है, जिसे कहते हैं भाग त्याग लक्षणा। तो ये 4 महावाक्य है, बस वैसा ही पंचम महावाक्य है ओमकार। ओमकार भी कौन सा? 5वां महावाक्य है। इसीलिए यहां कहा सर्वे वेदाः यत् पदम आमनन्ति, चारों वेद जिस पद का, जिस परम पद का बार बार वर्णन कर रहे हैं वह है ओमकार, क्योंकि अंत में है ना ओम इति एतत्, तो ये सब ओमकार के साथ जाएगा। फिर आता है तपांसि सर्वाणि च यद् वदन्ति, सब तप जितने भी तप है शास्त्र में वह तप किसको लक्षित करता है? उसी परम पद को, और उसी परम पद को मैं संक्षेप में कह रहा हूं ओम। अब तप जो है, तप का मतलब है, एक तो है सहन करना। हमारे जीवन में जो भी दुख आता है हम प्रसन्नता पूर्वक सहन करते हैं, तप का एक अर्थ है सहन करना, और दूसरा है आलोचना, यानी कि उसके ऊपर नित्य निरंतर विचार करना। तब दोनों मिला के अर्थ क्या हो गया? क्लेश पूर्वक सहन करके जीवन में जो भी दुख आते हैं उसके ऊपर विचार करना, उसे कहते हैं तप। आप लोग भी तप अवश्य करते ही होंगे। नहीं स्वामी जी, हम तप नहीं करते कभी। नहीं नहीं, आप लोग अवश्य करते हो, ट्रेन में जाते हो, लटकते हो, कितनी भीड़ होती है, क्यों करते हो भाई? ताकि दो पैसा कमा सके और घर में वापस आए तो कम से कम हल्की फुल्की गरम गरम रोटी भी पत्नी के हाथ की खाने मिले। इसीलिए लोग यह तप करते हैं। लेकिन यहां तप का अर्थ भिन्न है। यहां जो तप है उसके अंदर कोई व्यक्ति ने कोई बुरा कर्म किया तो उसका जो प्रायश्चित कर्म है, जैसे एक प्रायश्चित कर्म है चंद्रमा के दिन जब द्वितीया होती है तब दो ग्रास खाते हैं, तृतीया होती है तीन ग्रास खाते हैं, उस तरह हम बढ़ते जाते हैं। चांद्रायण तप जिसे कहते हैं कृच्छ्रद चांद्रायण तप, क्योंकि कुछ कर्म ऐसा हो गए हमसे कि जिनकी निवृत्ति शास्त्र ने कृच्छ्रद चांद्रायण तप के द्वारा ही हो सकती है। तो 15 दिन तक आप 15 ग्रास खाओ, ऐसा ग्रास नहीं है हाँ, लेकिन लोग भी होशियार है ऐसे खा ले, ऐसे नहीं, अपने ये हाथ में जितना आता है और खुद को खाना, ऐसा नहीं कोई बड़े व्यक्ति को बुला लिया उसके हाथ बहुत बड़े हैं तो उसने एक ग्रास, ऐसा नहीं, अपना जो हाथ है उससे एक ग्रास खाया और फिर बढ़ते गए 15 दिन तक, फिर बाद में 14, 13, 12। तो ये जो तप है वह जो प्रायश्चित कर्म के लिए है, यह भी तप हम ले सकते हैं। उतना ही नहीं, ये जो क्लेश जो हम सहन करते हैं जिसे अपरोक्षानुभूति में कहा स्ववर्णाश्रम धर्मेण तपसा हरितोषणा, अपने अपने वर्ण अपने अपने आश्रम के मुताबिक जो हम सहन करते हैं स्ववर्णाश्रम धर्मेण तपसा हरितोषणास, उस तप से क्या होता है, अंतकरण की शुद्धि होती है। जैसे मान लीजिए